हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू SOIC। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर के बिजनेस के बारे में बात करेंगे। पर जस्ट बिफोर आई स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस, बेसिकली अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बिकॉज द पर्पज ऑफ अ बिजनेस एनालिसिस इज टू टीच यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बिजनेसेस एंड सो दैट अ रिटेल इन्वेस्टर कैन लर्न हाउ टू एनालाइज दीज कंपनीज। एंड ऑल्सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट वी डू नॉट ओन द पर्टिकुलर बिजनेस, आर ओनली पर्पज इज टू एजुकेट यू कि आप कैसे एक फार्मास्यूटिकल बिजनेस पढ़ सकते हैं। तो जब भी हम फार्मा इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम पूरी वैल्यू चेन को कुछ डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप फार्मा इंडस्ट्री को देखते हैं तो यू कैन टॉक अबाउट डोमेस्टिक फार्मा इंडस्ट्री एंड दोज बिजनेसेस विच ऑल्सो एक्सपोर्ट। तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर बेसिक जो आपकी चीज़ होती है वो एक फीड स्टॉक होता है। तो फीड स्टॉक माने कोई भी बल्क केमिकल्स हों या फिर आपके जो भी बल्क प्रोडक्ट्स हों, तो दोज एक्ट एज फीड स्टॉक्स। जैसे अगर एल्काइलामाइन एक एसीटोनिट्राइल करके केमिकल बनाते हैं तो एक फीड स्टॉक का रोल एक्ट करते हैं। फीड स्टॉक के बाद आपके इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स आते हैं। तो इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? तो आपके मोस्ट ऑफ द केमिकल कंपनीज, चाहे SRF का एग्जांपल हो, फार्मास्यूटिकल के इंटरमीडिएट्स बनाती है, चाहे एमी ऑर्गेनिक्स का एग्जांपल हो, फार्मास्यूटिकल के इंटरमीडिएट्स बनाती है, चाहे एमी ऑर्गेनिक्स के अलावा यहाँ तक नवीन फ्लोरिन का भी एग्जाम्पल हो। सो ऑल दीज आर इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स आते हैं हमारे पास। फिर इंटरमीडिएट के बाद हम चलते हैं टुवर्ड्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडियंट मैन्युफैक्चरर्स, जो API मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। API मैन्युफैक्चरर्स में हमारे पास कंपनीज आती हैं, सपोज एग्जांपल ऑफ लॉरस लैब्स हो गया, न्यूलैंड लेबॉरेटरीज हो गया, डीवीएस लेबॉरेटरीज हो गया। तो ये सारी कंपनीज हैं जो APIs मैन्युफैक्चर करती हैं। फिर APIs मैन्युफैक्चर के बाद हमारे पास कंपनीज आती हैं जो फॉर्मुलेशंस मैन्युफैक्चर करती हैं। तो फॉर्मुलेशंस कौन मैन्युफैक्चर करता है? सो फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरर्स आर कंपनीज लाइक सन फार्मास्यूटिकल्स, लाइक डॉक्टर रेड्डीज, लाइक इवन लॉरस लैब्स, लाइक इवन आगे और एग्जाम्पल लेंगे तो ओलंबिक फार्मा, अजंता फार्मा, एंड कुछ कुछ फॉर्मुलेशन कंपनीज होती हैं जो वर्टिकली इंटीग्रेटेड होती हैं, माने वो API के अंदर बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर लेती हैं। तो ये तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वैल्यू चेन है। अब इस वैल्यू चेन को हम ज्योग्राफिकली एंड प्रोडक्ट वाइज और ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो इंटरमीडिएट और API बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे देर आर टू टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स। एक तो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं और एक आपके पेटेंटेड मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स कौन होते हैं? जो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट हो जो बहुत जेनेरिक हो चुका है, माने उस पर अभी पेटेंट नहीं है। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज लॉरस लैब्स ARV APIs मैन्युफैक्चर करती है, सो दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ जेनेरिक APIs, राइट? तो माने वो उस प्रोडक्ट पे कोई पेटेंट नहीं है, दुनिया में कोई भी उसको मैन्युफैक्चर कर सकता है। तो यहाँ पे यू विन ओनली बिकॉज ऑफ स्केल। तो अगर आप लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है एंड यू हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्केल, ओनली इन दैट सिनेरियो यू कैन विन। इंटरमीडिएट्स के अंदर भी हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो इंटरमीडिएट्स में भी पेटेंटेड इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरर है एंड जेनेरिक इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरर है। अगर हम SRF का इंटरमीडिएट बिजनेस देखते हैं या PI इंडस्ट्रीज का फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बिजनेस में भी वैसे एक पेटेंटेड है और एक जेनेरिक है, या तो अगर हम नवीन फ्लोरिन का इंटरमीडिएट बिजनेस की बात करते हैं, सो दैट इज़ जेनेरिक इन नेचर, राइट? बट यहाँ पे पेटेंटेड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं फार्मास्यूटिकल्स के, और पेटेंटेड API मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज डू अ बिट ऑफ बोथ। अगर न्यूलैंड लैब्स का एग्जांपल लें तो न्यूलैंड लैब्स पेटेंटेड इंटरमीडिएट्स बनाती है और पेटेंटेड APIs बनाती है। तो इट्स अ पार्टनर ऑफ CDMO इनोवेटर्स, माने जैसे जो न्यू एज बायोटेक्स है उनका पार्टनर है न्यूलैंड, राइट? सो दैट इज़ वेयर इन द वैल्यू चेन इट ऑपरेट्स। एंड न्यूलैंड का खुद का भी एक जेनेरिक API का बिजनेस है जिसको आप दो पार्ट्स में और तोड़ सकते हैं, दैट इज स्पेशलिटी API एंड सेकेंड इज जेनेरिक API। तो स्पेशलिटी API में क्या होएगा कि आपके प्रोडक्ट्स विल बी हायर रियलाइजेशन इन नेचर एंड वहाँ पे कम मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं। वेर एज जेनेरिक API के अंदर, सपोज लिखते हैं अगर आप आइबुप्रोफीन का एग्जांपल लेंगे, तो वो मॉलिक्यूल की प्राइसिंग $5 से $10 के बीच में पर किलो, तो अगेन वो जेनेरिक है। वेर एज स्पेशलिटी APIs में मॉलिक्यूल की प्राइसिंग $1,000 to $2,000 पर किलो ऑल्सो जा सकती है, पर टन भी जा सकती है। सो यहाँ पे एक वेबसाइट है फार्मा कंपस, जहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ अ स्पेशलिटी API एंड व्हाट इज़ अ जेनेरिक API। तो ये तो हमारी वैल्यू चेन थोड़ी सी और सिंप्लीफाई हुई। तो आज हम जिस कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं उसका नाम अमी ऑर्गेनिक्स है एंड करेंटली दिस कंपनी मैन्युफैक्चर्स इंटरमीडिएट्स। तो फार्मास्यूटिकल के इंटरमीडिएट्स ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इस टाइम पे जेनेरिक इंटरमीडिएट्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं एंड धीरे धीरे पेटेंटेड इंटरमीडिएट्स के अंदर भी आ रहे हैं एंड देर वर्किंग विद देयर पार्टनर बाय द नेम ऑफ फर्मियन। बट इस इंडस्ट्री को और सिंप्लीफाई करने के लिए फिर जब हम फॉरवर्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स पे जाते हैं, दैट इज फॉर्मुलेशन कंपनीज, जो एंड की आपकी दवाई होती है, तो इट कैन बी सोल्ड इधर इन अ टैबलेट फॉर्म और इट कैन बी सोल्ड इन एन इंजेक्टेबल फॉर्म और इट कैन बी बेसिकली सोल्ड इन अ लोसेंजेस फॉर्म, राइट? तो देर आर मल्टीपल मेथड्स ऑफ डिलीवरी फॉर अ फॉर्मुलेशन। जैसे अगर आप क्रोसिन की गोली खा रहे हैं तो अगेन दैट इज अ फॉर्म कि आप टैबलेट के अंदर ले रहे हैं। वेयर्स अगर आप किसी प्रोडक्ट को इंजेक्ट कराते हैं, सो दैट इज़ अगेन अ फॉर्म कि आप इंजेक्टेबल के अंदर ले रहे हैं। तो फॉर्मुलेशन के अंदर हमारे पास कैसी कंपनीज आती हैं, तो फॉर्मुलेशन के अंदर जैसे कि छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर सन फार्मा का एग्जांपल लेंगे, सो दैट इज़ अ फॉर्मुलेशन बिजनेस। अब फॉर्मुलेशन में भी क्या आएगा कि कई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज आएंगी। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में लूपिन है, सन फार्मा है, डॉक्टर रेडीज़ है, जो US को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कई कंपनीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रही होंगी, जैसे अगर आप एग्जांपल देते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, लिंकन फार्मास्यूटिकल्स है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रही है, राइट। कैपलिन लेबोरेटरीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट कर रही है, बट अब US मार्केट्स भी एंटर कर रही है इंजेक्टेबल्स में। सो दैट इज़ हाउ यू लुक एट इट। एंड फॉर्मुलेशन में फिर डोमेस्टिक फार्मुलेशन कंपनीज भी है। डोमेस्टिक फार्मुलेशन कंपनीज में अगर आप मैनकाइंड फार्मा का एग्जाम्पल लेंगे, तो एक डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। अगर एक एस्ट्राजेनिका का नाम लेंगे या एग्जाम्पल लेंगे, तो दैट्स एन MNC कंपनी जो डोमेस्टिक मार्केट्स या इंडियन मार्केट्स पे फोकस्ड है। एबिट लेबोरेटरीज का एग्जाम्पल लेंगे, अगेन एक MNC कंपनी है जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट्स के ऊपर फोकस्ड है। तो आप पूरी वैल्यू चेन को ऐसे तोड़ सकते हैं। तो आइडली डोमेस्टिक फार्मुलेशन कंपनीज के अंदर ROCE सबसे हाईएस्ट रहती है, बट ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी एक स्टेज के बाद कभी कभी हॉल्ट हो जाती है, क्योंकि पेनेट्रेशन यहाँ पे बहुत हो जाती है। एंड डोमेस्टिक फार्मुलेशन में भी क्रॉनिक और अक्यूट थेरेपी होती है। क्रॉनिक माने कि किसी को लंबे समय की बीमारी लगी हुई है तो बार बार दवाई कंज्यूम करेंगे। अक्यूट माने किसी को सर दर्द हो रहा है तो सिर्फ एक बारी पेन किलर खा के सही हो जाएंगे, राइट। सो क्रॉनिक थेरेपी में मार्जिन आर आइडली हायर वर्सेज जस्ट अक्यूट थेरेपी। तो पूरी इंडस्ट्री को हम ऐसे बाइफरकेट कर सकते हैं। आइडली इस इंडस्ट्री के अंदर हाईएस्ट मार्जिनस क्या है, एक तो पेटेंटेड CDMO में, चाहे आप इंटरमीडिएट का कर रहे हैं, API का कर रहे हैं। हाईएस्ट साइक्लिकलिटी का है, अगर आप फॉर्मुलेशन एक्सपोर्ट टू US कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी प्राइसिंग इरोजन होती रहती है, चाहे तो वहाँ पर हाईएस्ट साइक्लिकलिटी है। एंड साथ साथ और हाईएस्ट साइक्लिकलिटी है जो जेनेरिक API और जेनेरिक इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनके पास भी प्राइसिंग पावर कम रहती है। प्राइसिंग पावर क्यों कम रहती है, बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विद चाइनीज कम्पिटिटर्स। एंड जब आप उनके साथ कम्पीट करते हैं, सो अगेन बिकॉज देर आर नंबर ऑफ प्लेयर्स एंड देन देर आर लाइक, और क्योंकि आप कोई भी DMF फाइल कर सकता है, तो अगेन इट बिकम्स अ स्केल प्लेयर। बट दिस बिजनेस हैज़ कमोडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विन इन दिस बिजनेस। ओनली पीपल विद स्केल कैन विन इन दिस बिजनेस। सो दिस इज हाउ यू लुक एट द इंटायर इंडस्ट्री। एंड आज हम जिस प्लेयर की बात करेंगे, वो इंटरमीडिएट पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन में ऑपरेट करता है, दैट इज एमी ऑर्गेनिक्स, जिसका एक जेनेरिक और पेटेंटेड बिजनेस है। बिफोर आई स्टार्ट द बिजनेस एनालिसिस, कई रिटेल इन्वेस्टर्स पूछते हैं, तो आप बिजनेसिस फिल्टर कैसे करते हैं। सी, माई आइडिया इज टू टीच यू अबाउट डिफरेंट बिजनेसिस फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज। तो इस आइडिया को हमने कैसे फिल्टर करा, तो इस आइडिया की जो अभी शेयर होल्डिंग लिस्ट है, तो आई थिंक रिसेंटली SageOne का एक बल्क डील के अंदर नाम आया था, सो दैट इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टर्स दैट वी ट्रैक। देन एक वैल्यू क्वेस्ट करके भी फंड है, विच इज़ वन ऑफ द इन्वेस्टर्स दैट वी ट्रैक, उनका भी यहाँ पे जो लाइक जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके अंदर नाम आता है। देन आशीष कचौलिया इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टर दैट वी ट्रैक, तो उनका भी नाम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर आता है। सो दिस इज़ हाउ वी फिल्टर्ड द बिजनेस, राइट। सो दिस इज जस्ट अ फिल्ट्रेशन स्ट्रैटेजी कि हम सुपर स्टार इन्वेस्टर्स को देख रहे हैं कि वॉट आर दे बेसिकली लुकिंग एट, एंड देन वी आर बेसिकली स्टडिंग द बिजनेस। एंड अगेन हमें समझ आता है नहीं आता, दैट इज इररिलेवेंट। आइडिया इज टू टीच यू अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बिजनेस एनालिसिस। With this, we'll start the business analysis of Ami Organics. Hopefully, आपको पूरी pharmaceutical industry की अगर value chain अच्छे से समझ आई, do drop a hell yes in the comment section below. And इस business analysis में हम क्या करेंगे, हम लोग ये discussion करेंगे कि Ami Organics इस time पे pharmaceutical में क्या करती है, specialty chemicals में क्या करती है, company के अंदर growth triggers क्या है, past track record क्या रहा है management का, and finally risk pointers का एक बार ही आप सबके साथ discussion करेंगे with a brief overview of valuations. तो पहले हम Ami Organics की founding history देखते हैं। तो एक्चुअली Ami Organics 2004 के अंदर फाउंड हुई थी, एंड इट वॉज स्टार्टेड एज अ पार्टनरशिप फॉर्म। एंड इसके बाद क्या हुआ, ओवर द ईयर्स 2015 के अंदर कंपनी ने फाइनली 100 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करा। 100 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करने के बाद 2017 के अंदर कंपनी ने अपनी वेयरहाउस कैपेसिटी बढ़ाई एंड 150 करोड़ का रेवेन्यू अचीव करा। फिर 2018 के अंदर कंपनी वॉज रिकग्नाइज एज अ 2-स्टार एक्सपोर्ट हाउस। 2019 में कंपनी ने और सर्टिफिकेशन अचीव करी, एंड 2021 में कंपनी ने गुजरात ऑर्गेनिक्स करके एक कंपनी है जिसको अक्वायर करा। एंड देन कंपनी ने साथ साथ USFDA से बेसिकली जो इस्टेब्लिशमेंट इन द इंस्पेक्शन रिपोर्ट है, वो एक अप्रूवल होता है, वो रिसीव करा फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट सचिन। एंड फाइनली 2023 में कंपनी ने एक्विजिशन करा बाबा फाइन केमिकल्स का, विच इज़ अ कंपनी इन टू सेमी कंडक्टर केमिकल्स। तो बहुत बेसिक सेंस में अगर हम समझे पहले Ami Organics का बिजनेस बिफोर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री, तो Ami Organics के अंदर दो बिजनेसेस हैं, एक तो फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स का बिजनेस है और एक स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है। फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बिजनेस में जैसे हमने स्टार्टिंग में वैल्यू चेन सीखी, तो वहाँ पे ये बेसिकली इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं फॉर बोथ जेनेरिक एंड इनोवेटर्स। फिर स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर ये कुछ इंटरेस्टिंग केमिकल्स बना रहे हैं, पर स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर मार्जिन प्रोफाइल फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट से कम है, बट स्पेशलिटी केमिकल्स में फाइनली ये लोग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आए हैं, विच इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज. एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ दे हैव ऑल्सो कम इन टू अ बिजनेस विच इज़ फॉर मैनुफैक्चरिंग केमिकल्स फॉर सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री. तो ये तो बहुत नटशेल में बेसिक बिजनेस है. तो इस कंपनी के फाउंडर्स कौन है? तो इस कंपनी के जो दो फाउंडर्स हैं, फर्स्ट नेम इज बेसिकली उनका नाम है नरेश कुमार पटेल, सेकेंड फाउंडर का नाम है चेतन कुमार वगासिया. एंड इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ पे है? तो इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सचिन के अंदर है, राइट? सो अगेन दिस इज़ अ फैसिलिटी प्योरली फॉर मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स. अंकलेश्वर में इनकी एक बहुत बड़ी कैपेसिटी लाइफ जा रही है. यहाँ पे ऑलमोस्ट कंपनी 300 to 310 crores का केपेक्स कर रही है. एंड दिस इज़ अ न्यू कैपेसिटी विच इज़ गोइंग लाइफ. ये हम ग्रोथ ट्रिगर्स के अंदर डिस्कस करेंगे. एंड दिस विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट कैपेसिटीज टिल डेट. थर्ड इनका झगाड़िया में यूनिट है, राइट? तो एक्चुअली में अंकलेश्वर की सबसे बड़ी कैपेसिटी आएगी इनकी, और वेयर हाउस इनका सचिन के अंदर है. सो दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ द बिजनेस. फिर हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में. तो आज कंपनी का जो रेवेन्यू है, 84% रेवेन्यू ऑलमोस्ट फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट से आता है, एंड 16% रेवेन्यू इस कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल से आता है. एंड 85% ऑफ द रेवेन्यू जो इनका आता है, दैट इज़ यूज्ड बेसिकली दैट कम्स फ्रॉम इंटरमीडिएट्स विच आर यूज इन मैनुफैक्चरिंग APIs, जो हमने वीडियो की बिगनिंग में देखा था. जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, एक रिटेल इन्वेस्टर की बुल मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डू नॉट हैव एन एग्जिट फ्रेमवर्क. एग्जिट फ्रेमवर्क के साथ साथ सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या आती है? एक रिटेल इन्वेस्टर पास वैल्यूएशन फ्रेमवर्क नहीं है. वी डोंट नो हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बिजनेसेस. थर्ड की बिग प्रॉब्लम क्या आती है? वी कैन नॉट फाइंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स. एंड लास्ट की बिग प्रॉब्लम क्या आती है कि वी डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल प्लान इन प्लेस विच कैन हेल्प यू फॉर मल्टीपल ईयर्स एंड मल्टीपल डेकेड्स. सो ऑल दीज की फोर थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे हम आपको हर चारों चीज़ों पे एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वेर यू कैन लर्न हाउ टू वैल्यू बिजनेसेस, वेर यू कैन डेवलप योर ओन एग्जिट सिस्टम. एंड इसके साथ साथ आप ये भी कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, दैट यू कैन डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग इंडिपेंडेंटली. एंड मोर ओवर, यू कैन ऑल्सो फाइंड स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इंडिपेंडेंटली बाई यूजिंग मल्टीपल स्क्रीन्स दैट वी हैव टॉट इन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द कोर्सेज. If you want to register for the SOIC membership, then link is there in the description box below, and you can use the coupon code SOICBONUS10, which is valid for the next 24 hours. अब हम क्या करते हैं कि इनके जो दोनों businesses हैं, pharmaceutical intermediates का and specialty chemicals का, इन दो businesses की separately discussion करते हैं. And पहले हम start करते हैं pharmaceutical intermediate business से कि यहाँ पे करते क्या हैं, because दिस बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट टू 85 to 86% ऑफ द सेल्स ऑफ द कंपनी. तो इनका जो फार्मा इंटरमीडिएट्स का बिजनेस है, तो इन सम ऑफ द की मॉलिक्यूल्स जो ये APIs के लिए फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स देते हैं, वहाँ पे इनका 50 to 90% मार्केट शेयर है. करंटली फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बिजनेस में द कंपनी हैज़ मोर देन 185 कस्टमर्स, एंड FY23 में कंपनी ने 30 न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करे थे. एंड कंपनी की मेजर टू मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, एक सूरत के अंदर और एक अंकलेश्वर के अंदर. तो यहाँ पे अगर इनके कस्टमर्स देखते हैं किस किस टाइप के, सो वी नो कि दे हैव बेसिकली कस्टमर्स लाइक जाइडस, सन फार्मास्यूटिकल्स, लॉरस लैब्स, सिप्ला, डॉक्टर रेडीज. लॉरस लैब्स एक्चुअली वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स है. बेयर्स एक कस्टमर है, फर्मियन एक कस्टमर है, राइट? तो इनोवेटर्स के अंदर आप कस्टमर्स देख सकते हैं कौन कौन है. तो इनोवेटर्स वो लोग हैं जो मॉलिक्यूल की रिसर्च एंड डिस्कवरी करते हैं. बिकॉज एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स में जो जेनेरिक के अंदर कस्टमर्स हैं, तो वो इंडियन कंपनीज लाइक जाइडस, डॉक्टर रेडीज, हेटेरो हो गया, जो बेसिकली कॉपी कैट ड्रग्स बनाते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द कस्टमर्स डैट द कंपनी हैज़ इन फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स. बट कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स में क्या है. तो इस कंपनी के चार बिजनेस मॉडल्स हैं अंडर द फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बिजनेस. तो चार बिजनेस मॉडल्स क्या हैं? तो फर्स्ट बिजनेस मॉडल क्या है इस कंपनी का, कि ये कंपनी जो इनोवेटर्स के जो NCEs होते हैं, माने इनोवेटर्स के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे ड्रग्स बने होते हैं, उनके लिए कंपनी क्या करती है कि ये इंटरमीडिएट्स बनाते हैं. एंड यहाँ पे क्या है कि इनोवेटर्स के बहुत सारे NCEs का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है. आप मानिए कि कुछ सालों बाद जो दवाइयाँ होती हैं उनका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, तो दे बिकम जेनेरिक. तो वहाँ पे इनोवेटर्स के साथ काम करके उनके इंटरमीडिएट्स मैन्युफैक्चर करते हैं. सो दिस पार्ट ऑफ द बिजनेस इज क्लोज टू 40% ऑफ द सेल्स. एंड इस बिजनेस के जो मार्जिन प्रोफाइल है, इट इज़ स्लाइटली अबव द इंटायर फार्मा बिजनेस मार्जिन प्रोफाइल. अब हम समझते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस क्या है. सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस इज ऑफ पेटेंट बिजनेस. एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू 50 to 53% ऑफ द सेल्स. यहाँ पे कस्टमर्स लाइक जाइडस हो गया, सन फार्म हो गया, इन सारे कस्टमर्स के साथ ये कंपनी काम करती है. एंड यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर आप एग्जाम्पल पैरासीटामोल का लेते हैं, लाइक जस्ट फॉर अ केस स्टडी, ये लोग आई थिंक पैरासीटामोल के इंटरमीडिएट्स नहीं बनाते, पर अगर पैरासीटामोल जो एक बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग है, अगर उसके इंटरमीडिएट्स अगर ये कंपनी बना रही है, तो अगेन डेट्स अ जेनेरिक ड्रग, क्योंकि उस ड्रग पर कोई पेटेंट नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने वाला. एंड क्योंकि यहाँ पे कस्टमर्स कौन है, सन फार्मा, जाइडस, ऐसी कंपनीज है जो इट सेल्फ कॉपी कैट ड्रग्स के अंदर है, राइट? तो यहाँ पे मार्जिन आपके नेचुरली आर बाउंड टू बी लेसर. तो यहाँ पे क्या मार्जिन प्रोफाइल रहता है, सो मार्जिन्स आर इन लाइन विद द ओवरऑल मार्जिन्स. सो ओवरऑल मार्जिन्स इस कंपनी के पहले 18-20% रहते थे, पीक पे 23% भी गए हैं. थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल क्या है इस कंपनी का, दैट इज बीइंग मैन्युफैक्चरर ऑफ इंटरमीडिएट्स फॉर इनोवेटर सीडीएमओ. तो जो कंपनीज के अभी मॉलिक्यूल्स डिस्कवर हो रहे हैं उसके लिए भी ये कंपनी ड्रग्स बनाती है, राइट. तो उसके लिए इंटरमीडिएट्स बनाती है. एंड टुडे दिस इज 5% ऑफ सेल्स. यहाँ पे आपको एक बार फोकस करना चाहिए बिकॉज ये 5% ऑफ सेल्स तो है बट दिस इज द हाईएस्ट मार्जिन पार्ट. यहाँ पे यूजली कंपनीज के 25-30% प्लस भी मार्जिन हो जाते हैं. तो यहाँ पे अभी क्या चल रहा है कि कंपनी ने फर्मियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा है. फर्मियन एक इनोवेटर है. तो पहले 3 मॉलिक्यूल्स मिले थे इनको, अब प्लांट स्टार्ट होने से पहले अंकलेश्वर में जब हम ग्रोथ ट्रिगर्स पढ़ेंगे उसके अंदर, तो इनको 2 मॉलिक्यूल्स और मिल गए हैं. एंड दैट इटसेल्फ कुड बी अ 300-350 crore का बिजनेस. सो दिस इज द थर्ड मॉडल ऑफ द बिजनेस फार्मा इंटरमीडिएट्स में. फोर्थ मॉडल ऑफ द बिजनेस क्या इनका, फोर्थ मॉडल है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट, राइट. सो बेसिकली अगेन जो डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनके साथ ये काम करते हैं टू बेसिकली सब्सटीट्यूट दोज इंटरमीडिएट्स जो चाइना से आ रहे हैं एंड वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं. तो अगेन दिस इज अगेन इन लाइन विद द कॉर्पोरेट मार्जिन्स जो आज की डेट में आई थिंक 14-15% के आसपास होंगे. एंड एक चीज़ आपको और समझनी है कि इनका जो फार्मा इंटरमीडिएट्स का बिजनेस है इसमें मार्जिन हायर है वर्सेज अ केमिकल बिजनेस. तो फार्मा इंटरमीडिएट्स के बिजनेस में हम इनके किन किन मॉलिक्यूल में की मार्केट लीडरशिप है एक बार ये वो भी देखते हैं. तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरमीडिएट्स में अगर हम इनकी मार्केट लीडरशिप देखते हैं तो आपको देखेगा यहाँ पे एंटी डिप्रेसेंट APIs के लिए कंपनी का ऑलमोस्ट 80-90% मार्केट शेयर है, राइट. देन डॉल्टोग्रोवीर जो लॉरेंस लैब्स का एक वन ऑफ द की मॉलिक्यूल्स है, वहाँ पे ARV APIs के लिए अगेन ये कंपनी इंटरमीडिएट्स बनाती है जहाँ पे 70-75% मार्केट शेयर है. वेयरएज पल्मोनरी फिब्रोसिस के लिए भी ये कंपनी एक इंटरमीडिएट्स बनाती है एंड इट इज़ दी ओनली सप्लायर टू द ओरिजिनेटर. अगेन दिस थेरेपी इज ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस एंड यहाँ पे कंपनी का नियरली 30-35% मार्केट शेयर है एक इंटरमीडिएट में, दूसरे इंटरमीडिएट में नियरली 40% मार्केट शेयर है. फिर एंटी कैंसर थेरेपी के अंदर भी कंपनी का एक की इंटरमीडिएट के अंदर 86-88% का मार्केट शेयर है. फिर एंटी कॉजुलेंट थेरेपीज है वहाँ पे भी कंपनी का 50-40% मार्केट शेयर है मेजर इंटरमीडिएट्स के अंदर. एंड देन एंटीसाइकोटिक के अंदर भी कंपनी का 40-50% मार्केट शेयर है. तो देन यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ द कंपनी हैज़ एस्टैब्लिश्ड मार्केट लीडरशिप इन अ लॉट ऑफ दीज इंटरमीडिएट्स. अनदर थिंग टू अंडरस्टैंड अबाउट देयर बिजनेस इज कि जो इनके हम पूरे इंटरमीडिएट्स का बिजनेस देखते हैं तो स्टेबल बेस वाले मॉलिक्यूल्स ही हैं. तो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे पूरे रेवेन्यू का इनका ब्रेकअप दिया हुआ है, तो मैं जानबूझ के इन मॉलिक्यूल्स का नाम ले रहा ताकि आपको कॉम्प्लिकेटेड ना लगे. तो जो नियरली 20-30% ऑफ द बिजनेसेस है वो स्टेबल बेस पे है कि वहाँ पे 5-10% टाइप्स ग्रोथ आते रहेगी. फ्यूचर प्रोडक्ट्स कंपनी ये सारे लॉन्च कर रही है. यहाँ पे ग्रोथ ड्राइवर्स में कंपनी का एक की मॉलिक्यूल है बाय द नेम ऑफ अबिक्साबान. एंड अबिक्साबान एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसपे अभी पेटेंट है जो एक्सपायर हुआ है रिसेंटली. एंड कंपनी लाइक अमी ऑर्गेनिक्स वन ऑफ द ओनली कंपनीज है जो उसके इंटरमीडिएट्स को अभी इस टाइम पे बनाना जानती है. एंड यूरोप के अंदर धीरे धीरे करके अबिक्साबान लॉन्च हो रहा है. तो दिस इज़ वन ऑफ द की मॉलिक्यूल्स जो हमें देखना चाहिए. आज ये मॉलिक्यूल सेल्स में इतना नहीं है बट दिस कुड बी अ ग्रोथ ड्राइवर इन द फ्यूचर. बट दिस इज़ ब्रॉडली हाउ इनके फार्मा इंटरमीडिएट्स का बिजनेस लगता है. एंड ग्रोथ ट्रिगर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि वॉट आर सम ऑफ द ग्रोथ ड्राइवर्स, चाहे वो फर्मियन की डील हो चाहे वो अबिक्साबान हो. एंड वहाँ से हमें एक इंटरेस्टिंग इंसाइट्स मिलेंगे. एक इंटरमीडिएट बिजनेस में और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 91% ऑफ देयर इंटरमीडिएट्स आर यूज इन क्रॉनिक थेरेपीज, माने वो डिजीजेज विच आर लाइफ स्टाइल डिजीजेज, जैसे डायबिटीज होगी, जैसे कैंसर हो गया, राइट. सो दीज आर डिजीजेज जहाँ पे डिमांड बहुत रिकरिंग रहती है वर्सेज अक्यूट थेरेपीज. तो अक्यूट थेरेपीज बेरली 9% ही है. सो अगेन दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट. और कस्टमर बेस भी इनका बहुत ज़्यादा है. तो मोर देन 175-180 कस्टमर्स होना माने कि आप ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री को सर्व करें. सो दीज आर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ देयर फार्मा इंटरमीडिएट बिजनेस. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स देयर केमिकल बिजनेस. एंड केमिकल बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि केमिकल बिजनेस का इनका मार्जिन फार्मा इंटरमीडिएट बिजनेस से अ बिट लेसर है, बट इस टाइम पे सेम हो रखा है क्योंकि फार्मा इंटरमीडिएट बिजनेस इज सफरिंग बिकॉज फार्मा इंटरमीडिएट किसको सप्लाई करते हैं, API प्लेयर्स को. एंड API चाइना से इस टाइम पे डंपिंग हो रही है. तो अगर API प्लेयर्स की जो लाइक प्रॉफिटेबिलिटी इवेपोरेट होती है तो अमी ऑर्गेनिक्स पे भी इम्पैक्ट आता है, राइट. तो अब हम केमिकल बिजनेस की बात करते हैं तो केमिकल्स के अंदर ये दो मेन प्रोडक्ट्स बनाते हैं. फर्स्ट प्रोडक्ट इज नेम बाय द नेम ऑफ पैराबिन एंड सेकेंड प्रोडक्ट जो बनाते हैं दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड. एंड इस बिजनेस के अंदर इन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट्स बनाने की भी कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करी है लास्ट 2 ईयर्स में, उसके लिए भी केपेक्स कर रहे हैं. एंड साथ साथ फाइनली इन्होंने एक कंपनी अक्वायर करी है बाय द नेम ऑफ बाबा फाइन केमिकल्स विच इज़ इन टू मैनुफैक्चरिंग ऑफ सेमी कंडक्टर केमिकल्स. तो अब हम केमिकल बिजनेस का एक बारी डिटेल एनालिसिस करते हैं. तो FY 2023 में कंपनी का जो केमिकल बिजनेस है यहाँ से 99 crore की कंपनी सेल कर रही थी विच इज़ नियरली 16% ऑफ द ओवरऑल सेल्स. कंपनी की एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है डेट इज इन जगाड़िया एंड कंपनी पास मोर देन 50 प्रोडक्ट्स हैं केमिकल बिजनेस में. बट माइंड यू केमिकल बिजनेस के जो मार्जिन हैं डेट विल ऑलवेज बी लेसर देन द फार्मा बिजनेस. इस टाइम भी इक्वल हो रखे क्योंकि फार्मा बिजनेस इंपैक्टेड है. तो केमिकल बिजनेस के अंदर जो पैराबेन की जब हम डिस्कशन करते हैं जो एक की केमिकल बनाते हैं उसका 50% यहाँ पे रेवेन्यू मिक्स के अंदर मार्केट शेयर है. फिर जब हम सैलिसिलिक एसिड की देखते हैं तो यहाँ पे 18% है. जब हम पैराबेन्स की बात करते हैं तो पैराबेन्स का जो मार्केट है वो 6.7% के CAGR पे ग्रो कर रहा है. एंड इनका जो एंड यूसेज है ये कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज़ होते हैं. तो आपने देखा होगा क्रीम्स के अंदर बहुत पैराबेन यूज़ होता है कभी कभी. फूड एंड बेवरेजेस के अंदर यूज़ होते हैं. फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होते हैं एंड अदर एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ होते हैं. फिर जब हम सैलिसिलिक एसिड की बात करते हैं तो इसका जो मेजर यूसेज है डैट इज़ यूज इन ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर्स. राइट, तो सैलिसिलिक एसिड आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे ब्रांड्स का मिल जाएगा खरीदने के लिए. एंड यहाँ पर भी जो मार्केट ग्रोथ है 6.7% CAGR के आसपास की है. एंड दोनों का जो आज मार्केट साइज है कंबाइंड मार्केट साइज दोनों मॉलिक्यूल्स का नियरली $800 million के आसपास का है. तो अमी ऑर्गेनिक्स ने एक्चुअली में बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए गुजरात ऑर्गेनिक्स की जो फैसिलिटीज़ है उनको अक्वायर करा था एंड स्लम सेल के अंदर इनको अक्वायर करा था. तो जो गुजरात ऑर्गेनिक्स है ये लोग भी प्रेजर्वेटिव्स बनाते हैं लाइक पैराबेन एंड पैराबेन फॉर्मुलेशंस एंड दे ऑल्सो मैन्युफैक्चर अदर स्पेशलिटी केमिकल्स. तो गुजरात ऑर्गेनिक्स की तो जो इन्होंने एक्विजिशन है वो थोड़े टाइम पहले ही करी थी. सो दिस इज़ वन ऑफ द एक्विजिशंस विच दे डिड. तो अब ये कंपनी क्या कर रही है, तो अभी इस टाइम पे इस कंपनी ने बाबा फाइनकेम नाम की एक कंपनी को अक्वायर करा है नियरली 50 to 60 crores के अंदर विच इज़ इनटू सेमीकंडक्टर केमिकल्स. एंड सेकंड कंपनी जो एंड सेकंड कैपेबिलिटी जो इस कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी है दैट इज़ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स जो ईवी बैटरीज में यूज़ होते हैं. तो पहले हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं. तो कभी भी आप ईवी बैटरी को देखेंगे तो ईवी बैटरी में 31% कॉस्ट कैथोड का है, राइट, वेर एज 6% कॉस्ट ही इलेक्ट्रोलाइट का है. तो ये लोग इलेक्ट्रोलाइट वाले डिवीजन में काम कर रहे हैं जहाँ पे पूरी बैटरी के अंदर जो 6% कॉस्ट है वो इलेक्ट्रोलाइट का रहता है, राइट. वेर एज गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पूरे के पूरे सारी चीज़ों में कर रहे हैं. सो दैट इज अगेन अ डिफरेंस बिटवीन देम. सो दिस इज वेयर द कंपनी इज वर्किंग इन. एंड ये इलेक्ट्रोलाइट के जो एडिटिव्स हैं उसके अंदर काम कर रहे हैं. तो व्हाट इज द बैरियर्स टू एंट्री वर कि कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है विद हाई बैरियर्स टू एंट्री. एंड अमी ऑर्गेनिक्स इज प्रॉब्ली द फर्स्ट कंपनी आउटसाइड चाइना टू बेसिकली डेवलप द इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव. लिमिटेड 7 to 8 प्लेयर्स इन द मार्केट एंड ऑल आर फ्रॉम चाइना. सब्सटीट्यूट्स के हैं इस प्रोडक्ट के कि बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट अमंग्स अवेलेबल ऑप्शंस. तो इस प्रोडक्ट के कोई की सब्सटीट्यूट्स नहीं है, राइट. तो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये इस टाइम पे 5 to 6 इलेक्ट्रोलाइट्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं जो उनके जो एडिटिव्स होते हैं उनकी भी. एंड कैपेसिटीज आर एक्सपेक्टेड टू चेज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट लीडिंग टू प्रोडक्ट बींग लेस प्रोन टू प्राइसिंग इरोजन, राइट. सो दिस इज वॉट दे आर डूइंग. एंड इस प्रोडक्ट के अंदर अभी कंपनी के साथ क्या हुआ है, तो कंपनी को CDMO ऑर्डर भी मिला है. तो बेसिकली बिकॉज ऑफ US एंड यूरोप ट्राइंग टू डी रिस्क फ्रॉम चाइना, तो ये लाइक अमी ऑर्गेनिक्स को इस टाइम पे इस प्रोडक्ट में CDMO का ऑर्डर मिले मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का कि इवन तो ये इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव्स बना रहे बट फाइनल इलेक्ट्रोलाइट की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिए CDMO टाइप अरेंजमेंट है, माने अगेन ठेकेदारी का काम या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम. सो दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर. एंड यहाँ पे मैनेजमेंट ने सॉफ्टली इंडिकेट करा है कि गुजरात गवर्नमेंट के साथ उन्होंने 300 crores के आसपास की इन्वेस्टमेंट का एक MOU करा है जो इन द फ्यूचर हो सकता है वो करें. एंड इस बिजनेस की जो स्टार्टिंग है वो FY 25 से हो रही है. इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस का क्या मार्जिन है, तो अगर केमिकल बिजनेस का मार्जिन 15-16% है और फार्मास्यूटिकल बिजनेस का मार्जिन नॉर्मल सिनेरियो के अंदर 20-21% बैठता है, तो इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस इज समवेयर इन बिटवीन दैट इज क्लोज टू 17-18% के आसपास. दैट इज एज पर मैनेजमेंट कॉमेंट्री रीसेंट कॉन कॉल के अंदर. सो दिस इज विद द इलेक्ट्रोलाइट अपॉर्चुनिटी दैट देयर परस्यूइंग. बट इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस के अंदर और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी आ रहे हैं, जैसे अगर न्यूजेन केमिकल्स देखते हैं तो वो भी इलेक्ट्रोलाइट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. बट क्योंकि अमी ऑर्गेनिक्स आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट के जो एडिटिव्स है उसके अंदर मेनली आ रहे हैं, तो फाइनल इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं. गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स भी पूरा एक इंटीग्रेटेड बैटरी केमिकल्स के केपेक्स के लिए एक पूरा प्लांट लगा रहे हैं, राइट. तो पूरा इंटीग्रेटेड प्लांट लगा रहे हैं फ्रॉम रॉ मटेरियल टिल द फाइनल प्रोडक्शन. एंड साथ साथ एथर इंडस्ट्रीज को भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ ऑर्डर मिला है. सो दीज आर 4 इंडियन कंपनीज विच आर करेंटली वर्किंग अंडर ईवी केमिकल्स, जिसमें से अमी ऑर्गेनिक्स एक है. अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द बाबा फाइनकेम एक्विजिशन. तो जब हम बाबा फाइनकेम की डिस्कशन करते हैं सो दैट इज़ अ बिजनेस जहाँ पे इस टाइम के कंपनी के जो मार्जिन्स हैं, तो ये लास्ट कॉन कॉल में तो कंपनी ने नियरली 20 crore का पैट टॉप लाइन करा था जिसमें 14 crore का नेट प्रॉफिट था. तो मिनिमम दिस कंपनी इज डूइंग मोर देन 40% प्लस EBITDA मार्जिन. पैट मार्जिन तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा लग रहा है बट आई थिंक इस कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कंफर्म करा था कि प्लस 40% प्लस EBITDA मार्जिन है. पर ये कंपनी आज इतनी बड़ी नहीं है. इस कंपनी की जो पूरी सेल है दैट इज़ क्लोज टू 45 crores per annum. एंड क्योंकि यहाँ पे अभी रिसेंटली इन्होंने अक्वायर करा है 55-60 crores का, तो कंपनी को सारे के सारे वेंडर्स के साथ नेम चेंज कराना पड़ा है, जिसकी वजह से इस बिज़नेस में थोड़ा सा स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। माने ग्रोथ नहीं आएगी, पर थोड़ा टाइम लगेगा नेम चेंज कराने में, क्योंकि एट द एंड आप सेमी कंडक्टर कंपनीज के साथ इम्पैनल्ड हो, तो यू आर इम्पैनल्ड बाय द नेम ऑफ बाबा फाइनकेम, तो आपको चेंज भी कराना पड़ता है। देन इस कंपनी की एक्विजिशन की अगर हम डिस्कशन करते हैं, तो उन्होंने ये कंपनी बेसिकली 55% स्टेक अक्वायर करा था ऑफ द टू पार्टनर्स इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। परचेज अग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 2023 अप्रैल एंड कंसिडरेशन वॉज ऑफ 68 करोर्स, वैल्यूएशन वॉज 4x ईबिटा। माने ये कंपनी का ईबिटा उस टाइम पे 16-17 करोर्स का था, तो अगेन काफ़ी वैसे देखा जाए तो सस्ते प्राइस पे अक्वायर करा है। बट इट रिमेन्स टू बी सीन कि इस बिज़नेस को ये कैसे स्केल अप करते हैं। तो अभी तक तो हमने अमी ऑर्गेनिक्स के फार्मा इंटरमीडिएट बिजनेस बारे में और केमिकल बिजनेस बारे में सीख लिया, अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अ ग्रोथ ड्राइवर्स एंड फाइनली रिस्क की तरफ, एंड एंड में हम वैल्यूएशन भी करेंगे। तो अब हम कंपनी के जो ग्रोथ ट्रिगर्स हैं उनकी बात करते हैं। तो पहला की ग्रोथ ट्रिगर क्या है कंपनी में, कि कंपनी अभी करंटली 310 करोड़ का केपेक्स कर रही है अंकलेश्वर में, विच कैन गिव एसेट टर्न्स ऑफ 3-3.5 times। इसका मतलब है कि 300 करोड़ का केपेक्स है तो इस प्रॉबेबली इस केपेक्स से 900-1000 करोड़ की सेल्स हो सकती हैं। सेकेंड क्या है कि अगर बाबा फाइनकेम का बात करें, विच इज़ अ कंपनी इन टू मैन्युफैक्चरिंग सेमी कंडक्टर केमिकल्स जैसे हमने सीखा, तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस इस बिजनेस की भी क्या है कि आज 45 करोड़ की सेल्स है एंड दिस सेल्स कैन बी स्केल्ड अप बाय ऑलमोस्ट 3x, एंड बाबा फाइनकेम में मोर देन 40% प्लस ईबिटा मार्जिन है। फिर एक थर्ड की ग्रोथ ट्रिगर के अमी ऑर्गेनिक्स में, केपेक्स तो सब कर लेते हैं पर केपेक्स की ऑफ टेक बहुत ज़रूरी है, कि 1/3 ऑफ द अंकलेश्वर का जो केपेक्स है इट इज़ बेसिकली डेडिकेटेड फॉर फर्मियन। तो 1/3 ऑफ द केपेक्स दैट इज ऑलमोस्ट 300-350 करोड़ का केपेक्स इज बेसिकली डेडिकेटेड फॉर फर्मियन, जो एक फार्मास्यूटिकल इनोवेटर है। फिर फोर्थ की ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि प्लानिंग टू अचीव 1000 करोड़ रेवेन्यू बाय मिड FY26। तो इन्होंने रेवेन्यू का एक रफली गाइडेंस दिया हुआ है, आज आई थिंक रेवेन्यू 450-500 करोड़ के हैं, तो हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर फिफ्थ की ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि दे हैव डन अ MOU विद गुजरात गवर्नमेंट टू सेटअप 300 करोड़ ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर अ डेडिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस। तो इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस के लिए ऑलमोस्ट 300 करोड़ की गोइंग फॉरवर्ड अगर इनको ऑफटेक अच्छा आता है तो एक वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दिस कुड ऑल्सो एक्ट एज अ ग्रोथ ड्राइवर। एंड लास्ट टू ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस में सिक्स मोर एडिटिव्स हैं उनके लिए साइन करा है, एंड दे हैव साइंड अ MOU विद अ ग्लोबल मेजर फॉर सप्लाइज। तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक कस्टमर के साथ ऑलरेडी साइन अप करा है। एंड लास्टली द मार्जिन्स कैन रिवर्ट बैक टू 20%। सो दीज मार्जिन्स कैन रिवर्ट टू 20% अगर चाइना से प्राइसिंग प्रेशर हटने लग जाता है। एंड अब हम इस बिजनेस के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको देखते हैं, एंड साथ साथ इस बिजनेस की वैल्यूएशंस को देखेंगे। एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं ये स्टॉक नहीं ऑन करता, क्योंकि जब हम वैल्यूएशन का डिस्कशन करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट हो जाता है, जो हम आपके साथ इकट्ठे सीखेंगे दिस बिजनेस को एज अ केस स्टडी यूज करके। नाउ कमिंग टू द की एंटी थीसिस पॉइंटर्स ऑफ द बिजनेस, तो पहला की एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है कि द कंपनी रिमेन्स एक्सपोज टू डंपिंग ऑफ केमिकल्स फ्रॉम चाइना। तो एक डी स्टॉकिंग और केमिकल डंपिंग फ्रॉम चाइना से कंपनी एक्सपोज है, तो अगेन मार्जिनस इस टाइम पे जो पहले 20% प्लस होते थे, दे हैव फॉलन टू 15-17% रेंज। सो दैट इज़ वन ऑफ द की रिस्क फैक्टर्स कि कब मार्जिन की नॉर्मलाइजेशन होती है, कब मार्जिन एक्सपेंशन होती है, तो दैट इज़ समथिंग दैट वी मस्ट ट्रैक, राइट। सेकेंड थिंग क्या है कि आई थिंक अभी TTM पे जो PE मल्टीपल है वो 60x का है, तो बेसिकली TTM PE मल्टीपल क्या बता रहा है कि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ आनी चाहिए। जैसे हमने ग्रोथ ट्रिगर्स में देखा कि कंपनी में ग्रोथ के ट्रिगर्स बहुत हैं, बट अगर बाई चांस ग्रोथ नहीं आती तो TTM PE मल्टीपल डेफिनेटली 60 पे एलिवेटेड लगता है थोड़ा। तो सेकेंड की रिस्क वैल्यूएशन रिस्क हो सकते हैं, जो आपको इंडिपेंडेंटली एनालाइज और असेस करना चाहिए। थर्ड की रिस्क जो इस कंपनी में हो सकता है, दैट इज़ अगेन कि जो इनके एंड इंटरमीडिएट्स हैं वो अगर किसी पर्टिकुलर API में जा रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर API की ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूसेज खत्म हो जाती है, जैसे अगर ARV थेरेपी की बात करते हैं, सो अगेन दैट कैन ऑल्सो सर्व एज अ की रिस्क पॉइंटर वेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर बिजनेस। सो दीज आर ब्रॉडली 3 रिस्क पॉइंटर्स, एंड फाइनल रिस्क पॉइंटर इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस का है। तो इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस के अंदर इवन दो कॉन्कॉल्स में इन्होंने हायर मार्जिन बताए हैं, बट इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देर इज अ पोटेंशियल और देर इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इवन मोर मैन्युफैक्चरर्स स्टार्ट एंटरिंग। जैसे हमने अनाउंसमेंट्स रिसेंटली देखे हैं कि बाकी केमिकल कंपनीज भी इलेक्ट्रोलाइट्स एंड जो एडिटिव्स हैं उनके लिए पूरे बैटरी कॉम्प्लेक्स ही लगा रही हैं, सो दैट कुड ऑल्सो बी अ की रिस्क फैक्टर। सो दीज आर ब्रॉडली 4 or 5 की रिस्क फैक्टर्स, एंड एक साथ साथ की रिस्क फैक्टर क्या रहेगा, बिकॉज इट्स अ केमिकल बिजनेस, तो रिस्क ऑफ फायर और रिस्क ऑफ बेसिकली लाइक इन्वायरमेंट विल ऑलवेज रिमेन, कि कैसे कंपनी बेसिकली जो QC प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो करती है। सो दैट इज़ ऑल्सो की रिस्क फैक्टर विच एनी इन्वेस्टर मस्ट लुक एट वेन एवर यू आर एनालाइजिंग केमिकल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट कंपनीज। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स अ ब्रीफ वैल्यूएशन एनालिसिस, जहाँ पे हम ऊपर से वैल्यूएशन एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि रिवर्स DCM में क्या बेक्ड इन है, क्योंकि हमने ग्रोथ ट्रिगर्स देख लिए, हमने रिस्क फैक्टर्स देख लिए एंड हमने वैल्यूएशन देख ली, एंड देन फाइनली विल गो टूवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द बिजनेस एनालिसिस। तो हम फाइनली इस कंपनी की वैल्यूएशन को देखते हैं एंड आप कैसे इस कंपनी को इंडिपेंडेंटली वैल्यू कर सकते हैं एंड एक हम ब्रीफ आइडिया भी बनाएंगे। तो पहले हम इस कंपनी को वैल्यू करने के लिए साथ साथ स्क्रीनर भी खोल लेते हैं। तो हम यहाँ पे अमी ऑर्गेनिक्स लिखते हैं, राइट? आप तिजोरी फाइनेंस पे रिवर्स DCF भी कर सकते हैं। तो पहले हम कंपनी की सेल्स देखते हैं, 160 करोड़ से ऑलमोस्ट 617 या 680 करोड़ के आसपास TTM पे हुई है, डेट इज ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पे। एंड कंपनी की अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखते हैं तो क्वार्टरली सेल्स के अंदर कंपनी के जो मार्जिन है अभी, तो अगर मैं आपके साथ यहाँ पे पॉइंट आउट करूँ तो कंपनी के मार्जिन पिछले दो क्वार्टर से घट रहे हैं, राइट? तो 14% से 16% के आसपास आए हैं। आई थिंक क्वार्टर फोर की गाइडेंस है 18% के आसपास होंगे और क्वार्टर वन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से वापस 20% के आसपास इनके मार्जिन हो जाने चाहिए। सो दिस इज़ विद अ सिंपल आइडिया कि मार्जिन का एक आइडिया लेके चलते हैं। फिर हम देखते हैं अंकलेश्वर में जो इनका केपेक्स हो रहा है वो ऑलमोस्ट 300 करोड़ का केपेक्स है, 310 करोड़ का। वहाँ से 950 टू 1000 करोड़ की एडिशनल सेल आ सकती है। आज कंपनी कितना सेल कर रही है? 680 करोड़ के आसपास का, राइट? एंड कंपनी की जो इलेक्ट्रोलाइट बिजनेस है, तो यहाँ पे इफ द बिजनेस स्केल्स तो यहाँ पे भी 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बट लेट्स कीप दिस एज एन ऑप्शनैलिटी एंड लेट्स सेट इट असाइड। यूवी ऑब्जॉर्बर करके केमिकल्स निकाल रहे हैं जिसमें बहुत हाई मार्जिन है। फर्मियन कॉन्ट्रैक्ट भी जो है, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अंकलेश्वर केपेक्स, यहाँ पे 300 टू 350 करोड़ के आसपास की सेल सिर्फ इस कॉन्ट्रैक्ट से आएगी। एंड मार्जिन फ्रॉम क्वार्टर वन विल गो टू 20% एंड बाबा फाइन केमिकल्स का ओवर 3-4 ईयर्स आई थिंक 3 times के आसपास का स्केल अप आ सकता है। तो ऐसे बिजनेस को वैल्यू करने के लिए हम लोग एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक थॉट प्रोसेस करते हैं कि इस कंपनी का FY26 का एक हम PNL बना के देखते हैं। पर वैल्यू करने से पहले एक चीज़ और हम सीख लेते हैं कि कंपनी का जो कैश कन्वर्जन रहा है हिस्टोरिकली, तो कैश कन्वर्जन डिसेंट रहा है फॉर अ B2B बिजनेस, क्योंकि बीच बीच में कैश कन्वर्जन खराब था काफ़ी, -12 करोड़ कैश फ्लो भी हो गया था। तो कंपनी को डेट भी बीच में लेनी पड़ी थी केपेक्स के लिए और अब कंपनी ने IPO के बाद डेट रीपे कर दी थी। तो अभी भी जो अंकलेश्वर में केपेक्स है आई थिंक उसमें कुछ 110 प्लस करोड़ का कंपनी ने डेट भी लिया है, राइट? तो जो हमें फुल ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखेगा। तो नाउ जस्ट कमिंग टू द स्मॉल फाइनेंशियल मॉडलिंग जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ PNL, अभी हम कैश फ्लोज के बेसिस पे नहीं कर रहे। तो PNL बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो आज कंपनी का जो फिक्स एसेट बेस है वो ऑलमोस्ट जब 205 करोड़ का था तो कंपनी का जो डेप्रिसिएशन था ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास का था। तो ये जो फिक्स एसेट बेस है दिस विल गो टू 515 करोड़, क्योंकि 310 करोड़ का केपेक्स आ रहा है। तो 515 करोड़ में से भी अगर हम 5% का डेप्रिसिएशन मान लेते हैं तो सिंपल क्या आएगा कि यहाँ पे 25 करोड़ के आसपास का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डैट इज़ 25 करोड़ के आसपास का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट देखते हैं कंपनी का, इंटरेस्ट कॉस्ट अगर आज हम देखते हैं 4 करोड़ है, बट आफ्टर ऑल द केपेक्स एंड स्टफ इज कंप्लीटेड, तो लेट्स अज्यूम कि इंटरेस्ट कॉस्ट गोज टू 15 करोड़ बिकॉज कंपनी इज बॉरोइंग मोर देन 100 करोड़। अदर इनकम आज कंपनी की पहले -26 रही है, तो अदर इनकम अगर हम चेक करें तो अदर इनकम हम फॉर रफ अप्रॉक्सीमेशन 3 करोड़ के ले लेते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, कंपनी की जो टॉप लाइन है पहले हम 1000 करोड़ की लिख देते हैं यहाँ पे जस्ट फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड कंपनी में हम और क्या करते हैं, तो EBITDA निकालेंगे अभी हम कंपनी का यहाँ पे, एंड कंपनी का डेप्रिसिएशन हो गया, PBT निकालेंगे यहाँ से, राइट? सो दिस इज जस्ट अ रफ अप्रॉक्सीमेशन जो हम लोग इस कंपनी के अंदर करेंगे। एंड कंपनी के जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है उसको भी यहाँ देखते हैं। तो अब हम क्या अज्यूम करते हैं कि कंपनी के जो मार्जिन है देखो बैक टू 20% EBITDA लेवल पे 20% के आसपास का इनका मार्जिन आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 1000 करोड़ की सेल होती है और 20% EBITDA मार्जिन होता है तो सिंपली वील जस्ट मल्टीप्लाई दिस टू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपनी का EBITDA आ जाएगा, डेट इज 200 करोड़ का। देन EBITDA में से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, आई थिंक अदर इनकम एड बैक करेंगे क्योंकि हमने स्क्रीनर से डेटा लिया तो वो अदर इनकम को हटा के EBITDA निकालते हैं। तो सिंपली जब हम ये दो चीज़ें करेंगे, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में से हमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है और टैक्सेस हटाने हैं, तो हमारे पास PAT आ जाएगा। तो पहले हम PBT पे आते हैं। तो PBT पे आने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली 200 लेंगे, दैट इज 200 करोड़ का EBITDA, उसको माइनस करेंगे हम लोग, माइनस किससे करेंगे, दैट इज 25 करोड़ की डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन में हम लोग ऐड करेंगे आपके इंटरेस्ट कॉस्ट को, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट भी माइनस होएगा। और इन दोनों में से भी हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास फाइनल अमाउंट आएगा उसमें हम 3 करोड़ के आसपास का जो अदर इनकम है उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस दिस अमाउंट एंड लेट्स क्लोज द ब्रैकेट्स। तो हमारे पास 157 करोड़ का PBT आ जाता है। अब 25% टैक्स रेट है तो हम इस कंपनी का PAT निकाल लेते हैं। हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डेट इज़ एंड किससे करेंगे, 75% से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आएगा जो पोस्ट टैक्सेस अमाउंट होएगा 117.75 करोड़ का। आज कंपनी का क्या मार्केट कैप है, तो आज मार्केट कैप 3947 करोड़ का है। तो नियरली कंपनी आई थिंक 2 ईयर फॉरवर्ड पे 40 times के अर्निंग्स के ऊपर है आज। दिस इज़ ऑन वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स। अगर इन मार्जिन ज़्यादा हो जाते हैं, सपोज करते हैं यहाँ पे मार्जिन इनका 24% आ गया, राइट, सो देन अगेन दिस नंबर कुड गो हायर. अगर यहाँ पे सेल्स, अगर सेल्स का नंबर ज़्यादा आ गया देन दिस नंबर कुड गो हायर. बट हमेशा फोरकास्टिंग करते हुए वी ट्राई टू बी एज कंजर्वेटिव एज पॉसिबल. सो दीज आर द वैल्यूएशंस ऑफ द बिजनेस एंड होपफुली आपको समझ आया कि आप कैसे कंपनीज का फोरकास्टिंग कर सकते हैं पीएनएल के थ्रू. एंड एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई डू नॉट ओन द स्टॉक. मैंने आपको सिर्फ एक सिंपली सिखाया कि इस बिजनेस में क्या चल रहा है एंड हाउ टू डू अ बिजनेस एनालिसिस ऑफ अमी ऑर्गेनिक्स. सो दिस वॉज द बिजनेस एनालिसिस ऑफ अमी ऑर्गेनिक्स. एंड इस बिजनेस एनालिसिस में हमने क्या सीखा, हमने बिगनिंग में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वैल्यू चेन सीखी, फिर हमने सीखा कि हमने अमी ऑर्गेनिक्स को फिल्टर कैसे करा, फिर देन वी लुक्ड एट कि इनका फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट बिजनेस क्या है, फिर स्पेशलिटी केमिकल्स का हमने इनका बिजनेस एनालाइज करा जहाँ पे हमने ये भी देखा ये इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या कर रहे हैं एंड सेमीकंडक्टर केमिकल्स के अंदर क्या कर रहे हैं. देन वी डिस्कस द ग्रोथ ट्रिगर्स ऑफ द कंपनी एंड हमने कंपनी के साथ साथ फाइनेंशियल्स देखे, फिर हमने बात करी कंपनी के अंदर एंटी थीसिस या की रिस्क फैक्टर्स क्या है एंड फाइनली टुवर्ड्स द एंड वी डिस्कस द वैल्यूएशंस ऑफ द बिजनेस. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपकी क्या की लर्निंग्स थी इस बिजनेस एनालिसिस से एंड आप नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस कौन से बिजनेस पे देखना चाहेंगे. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC. जय हिंद.